एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को देखने और हाँ दिखाने के तरीके पर हमारे समझ को बिल्कुल हिला कर रख दिया है।
कौन सी किताब?
सूज़न सोंटैग की मशहूर किताब ऑन फोटोग्राफी।
ओ हाँ बिल्कुल, और ये किताब तो मुझे लगता है आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।
सही कह रहे हैं।
जरा सोचिए, हम हर रोज मतलब हर रोज कितनी तस्वीरों से घिरे रहते हैं। सुबह उठते ही सोशल मीडिया फीड है, फिर खबरों में, विज्ञापनों में, अरे हमारे अपने फोन गैलरी में ही हजारों तस्वीरें। कभी ये सोचा है कि ये जो हम लगातार तस्वीरें खींचते हैं और देखते रहते हैं, ये असल में दुनिया को समझने और महसूस करने के हमारे तरीके को कैसे बदल रहा है?
हाँ देखिए, यही वो गहरा सवाल है जिसके इर्द गिर्द सूज़न सोंटैग ने ये पूरी किताब बुनी है। ये किताब एक तरह से हमें सिखाती है कि तस्वीरें सिर्फ पल कैद नहीं करती।
अच्छा, तो फिर क्या करती हैं
वो? हमारे सोचने के तरीके को, हमारी भावनाओं को, यहाँ तक कि हमारी नैतिकता को भी आकार देती हैं। वो सिर्फ सच्चाई दिखाती नहीं बल्कि एक तरह से सच्चाई बनाती भी हैं।
ये तो काफी गहरी बात है, तस्वीरें सच्चाई बनाती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि ये विचार किसके हैं, मतलब कौन थी ये सूज़न सोंटैग?
बिल्कुल, सूज़न सोंटैग, जिनका समय 1933 से 2004 तक रहा, वो 20वीं सदी की अमेरिका की सबसे जानी मानी, आप कह सकते हैं, बुद्धिजीवियों में से एक थी। एक लेखिका, दार्शनिक, फिल्म मेकर भी और सांस्कृतिक आलोचक भी।
हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में, काफी तीखे और मौलिक विचारों के लिए जानी जाती थी।
बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शायद सुना हो, कि वो खुद कोई पेशेवर फोटोग्राफर नहीं थी।
ओह, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर फोटोग्राफी पर इतनी प्रभावशाली किताब कैसे?
हाँ, और शायद यही उनकी खासियत थी। उन्होंने फोटोग्राफी को, आप कह लें, कैमरे के लेंस या तकनीक की बारीकियों से नहीं देखा।
तो फिर किस नजरिए से?
उन्होंने इसे एक दार्शनिक और समाजशास्त्री की नजर से देखा। उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये जो हम सब इतनी आसानी से रोजमर्रा में तस्वीरें खींच लेते हैं, इसका हमारी सोच पर, हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ रहा है?
मतलब वो उन छिपे हुए पहलुओं पर बात कर रही थी जिन पर हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते।
एग्जैक्टली, वो मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू जिन पर शायद फोटोग्राफर खुद भी उतना ध्यान नहीं देते। उनकी नज़र फोटोग्राफी के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर थी, उसके असर पर।
अच्छा, तो अब अगर किताब की बात करें ऑन फोटोग्राफी की, ये है क्या असल में? कोई गाइडबुक है?
6 निबंधों का एक संग्रह जो उन्होंने 1973 से 1977 के बीच लिखे थे। ये फोटोग्राफी के मतलब और उसके असर पर एक गहरा चिंतन है, एक तरह की फिलॉसफी है।
चिंतन, तो इसका मुख्य विचार क्या है, मतलब सोंटैग कहना क्या चाहती हैं इस किताब से?
मेरे ख्याल से उनका जो सबसे बड़ा केंद्रीय तर्क है वो ये है कि तस्वीरों की इस बाढ़ ने, जो हमारे चारों तरफ है ना, उसने असलियत के साथ हमारे रिश्ते को बदल दिया है।
कैसे बदल दिया है?
ऐसा लगता है जैसे तस्वीरों ने एक अलग ही दुनिया बना दिया। सोंटैग उसे इमेज वर्ल्ड कहती है, और ये इमेज वर्ल्ड, ये तस्वीरों की दुनिया, कभी कभी हमें असली दुनिया से ज्यादा लुभाने लगती है।
हाँ, ये तो मैं समझ सकती हूँ, सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही लगता है अक्सर।
बिल्कुल, और वो कहती हैं कि ये रिश्ता बड़ा पेचीदा है, मतलब तस्वीरें हमें दूर दराज की चीजों से जोड़ती तो हैं, है ना, हम घर बैठे दुनिया देख लेते हैं।
हाँ वो तो है,
लेकिन साथ ही वो हमें अपने आसपास की असलियत से काट भी सकती हैं। हमें लगता है कि हमने तस्वीर देखकर कुछ जान लिया, कुछ समझ लिया, पर सोंटैग कहती हैं कि ये अक्सर ज्ञान का सिर्फ एक भ्रम होता है, असली अनुभव नहीं, गहरी समझ नहीं।
तो ये सिर्फ ज्ञान और भ्रम की बात नहीं है?
नहीं नहीं, ये किताब सुंदरता, दुख, सच्चाई, यादें, इन सब बड़ी मानवीय चीजों पर फोटोग्राफी के असर को भी खंगालती है। ये एक तरह से हमें उकसाती है कि हम कैमरे के जादू को समझें और उसके असर पर सवाल उठाएं।
चलिए, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। अब इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। कहाँ से शुरू करती हैं वो अपनी बात?
वो अपनी बात शुरू करती हैं प्लेटो के मशहूर गुफा के रूपक से। उनका पहला निबंध है इन प्लेटोस केव, यानी प्लेटो की गुफा में।
हाँ, प्लेटो की गुफा, ये तो फिलॉसफी का क्लासिक उदाहरण है, पर फोटोग्राफी से इसका क्या लेना देना?
बहुत गहरा लेना देना है सोंटैग के हिसाब से। वो कहती हैं कि हम आधुनिक लोग एक तरह से प्लेटो की गुफा के उन कैदियों जैसे हो गए हैं।
अच्छा, कैसे?
जैसे वो कैदी असली दुनिया को नहीं बल्कि दीवार पर पड़ रही छायाओं को ही सच मान बैठे थे, वैसे ही हम आज तस्वीरों को ही असलियत समझने लगे हैं। आज के दौर में ये छायाएं क्या हैं? तस्वीरें।
वाह, मतलब हम तस्वीरों की दुनिया में इतने खो गए हैं कि कई बार वही हमें असली लगने लगती है।
हाँ, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहती हैं कि तस्वीर लेना एक तरह से किसी चीज पर कब्जा करना है। फोटोग्राफी बतौर कब्जा, पोजेशन।
कब्जा करना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
सोचिए इसके बारे में। जब आप किसी खूबसूरत नज़ारे की या किसी व्यक्ति की तस्वीर लेते हैं तो आप जाने अनजाने में उस पर एक तरह का अधिकार जता रहे होते हैं, है ना? उसे अपनी यादों के, अपने संग्रह का हिस्सा बना रहे होते हैं।
हाँ, इस तरह से तो मैंने सोचा नहीं था, जैसे हम दुनिया को तस्वीरों के जरिए इकट्ठा कर रहे हो।
बिल्कुल, और वो कहती हैं कि ये कब्जा करने का भाव कभी कभी आक्रामक भी हो सकता है। फोटोग्राफी एक आक्रामक कृत्य भी हो सकती है।
आक्रामक? कैसे? हम तो बस फोटो खींचते हैं।
सोंटैग कैवरे की भाषा की तरफ इशारा करते हैं। हम क्या कहते हैं? तस्वीर शूट करना, कैप्चर करना।
हाँ, कहते तो हैं।
ये शब्द कहाँ से आते हैं? शिकार से, हिंसा से। सोंटैग यहाँ तक पूछती हैं कि क्या तस्वीर लेना एक तरह का सॉफ्ट मर्डर है?
सॉफ्ट मर्डर? बाप रे, ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बात है।
है, मतलब किसी पल या व्यक्ति को स्थिर करके उसे एक वस्तु में बदल देना। ये हमें कैमरे के पावर डायनेमिक्स, उसकी शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब किसी पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना, क्या वो उसकी जिंदगी छीन लेने जैसा है? शायद ये थोड़ी अतिशयोक्ति लगे, पर हाँ, सोचने को मजबूर करती है ये बात।
और यहीं से जुड़ता है नैतिकता का सवाल। वो अमेरिकी फोटोग्राफर डायन आर्बस का उदाहरण देती हैं। आर्बस ने अक्सर समाज के हाशिए पर खड़े लोगों या कह लें असामान्य दिखने वाले लोगों की तस्वीरें खींची।
हाँ, उनकी तस्वीरें काफी विचलित करने वाली मानी जाती हैं।
करते हैं, जो अमेरिका के हर रूप को, हर पहलू को अपनाते थे, एक तरह से सेलिब्रेट करते थे। आर्बस की तस्वीरें एक अलग, ज्यादा अंधेरी, विचलित करने वाली हकीकत दिखाती हैं।
तो सोंटैग का क्या कहना है इन तस्वीरों के बारे में?
वो सवाल उठाती हैं देखने की नैतिकता पर, एथिक्स ऑफ वॉयजरिज्म। जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? क्या हमें उन लोगों से सहानुभूति होती है, या हम उनसे एक दूरी बना लेते हैं, उन्हें अजीब मानकर खुद को सामान्य महसूस करते हैं?
ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या किसी की दुख या उसकी असामान्यता को दिखाना हमेशा नैतिक रूप से सही होता है? क्या ये तस्वीरें मदद करती हैं या सिर्फ हमारी जिज्ञासा शांत करती हैं?
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है सच्चाई का सवाल भी। क्या तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं? सोंटैग इस आम धारणा को कि कैमरा झूठ नहीं बोलता पूरी तरह से नकार देते हैं।
अच्छा, क्यों? लोग तो मानते हैं कि फोटो तो सबूत होता है।
उनका कहना है कि हर तस्वीर एक नजरिए का नतीजा है, एक चुनाव है। फोटोग्राफर तय करता है कि फ्रेम में क्या रखना है, क्या बाहर छोड़ना है, किस एंगल से लेना है, किस लाइट में।
हाँ, ये तो है।
फिर उसे एडिट किया जा सकता है, उसका कैप्शन बदला जा सकता है, उसे किस संदर्भ में दिखाया जा रहा है इससे उसका मतलब बदल जाता है।
ओह हाँ, आजकल के फेक न्यूज और फोटोशॉप के जमाने में तो ये बात कितनी ज्यादा सच लगती है। एक ही तस्वीर को अलग अलग लोग अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो तस्वीर वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं दिखाती, वो हमेशा एक व्याख्या होती है। उसका अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है, वो स्थिर नहीं होता।
ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, अब समय और यादों के बारे में क्या कहती हैं सोंटैग? तस्वीरों का इससे क्या रिश्ता है?
वो कहती हैं कि हर तस्वीर असल में गुजरे हुए वक्त का एक अवशेष है, एक सबूत है। वो एक तरह की मेमेंटो मोरी है, यानी मृत्यु या नश्वरता की याद दिलाने वाली चीज।
मेमेंटो मोरी मतलब?
क्योंकि वो जिस पल को दिखाती है वो पल तो हमेशा के लिए जा चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। वो तस्वीर उस पल की मौत का निशान है। पुरानी तस्वीरें देखते हुए ये एहसास शायद और भी गहरा होता है।
हाँ, ये बात तो सच है। पुरानी तस्वीरें देखकर एक अजीब सी उदासी या नॉस्टैल्जिया महसूस होता है।
और एक और दिलचस्प बात वो कहती हैं कि कैमरा साधारण चीजों को भी असाधारण बना सकता है। वो किसी भी चीज को, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना हो, उसके आसपास के माहौल से निकालकर फ्रेम में बंद करके उसे अजीब या रहस्यमयी बना देता है।
अच्छा, जैसे?
इसे उन्होंने अति यथार्थवाद से जोड़ा है। अति यथार्थवाद क्या है? वो नजरिया जो असलियत से परे, सपनों जैसी या अजीब चीजों को दिखाता है। सोंटैग कहती हैं कि कैमरा रोजमर्रा की चीजों में ये जादू, ये अजीबपन भर सकता है, बस उन्हें अलग करके दिखाने से।
तो मतलब हम तस्वीरों के जरिए दुनिया को इकट्ठा करते हैं, यादें बनाते हैं, चीजों को अजीब बनाते हैं, लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी है?
हाँ, सोंटैग चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि ये जो हम दुनिया को तस्वीरों के टुकड़ों में इकट्ठा करते हैं, ये असलियत को खंडित कर देता है और धीरे धीरे हम एक इमेज वर्ल्ड में जीने लगते हैं, तस्वीरों से बनी एक दुनिया जो असल दुनिया पर हावी होने लगती है।
इमेज वर्ल्ड, ये शब्द पहले भी आया था और यहीं पर वो हाइपर रियलिटी की बात करती हैं, है ना?
बिल्कुल। हाइपर रियलिटी ये वो स्थिति है जब किसी चीज की नकल या उसकी छवि असल चीज से ज्यादा असली या ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है।
इसका कोई उदाहरण?
जैसे आजकल हमें लगता है ना कि अगर किसी अनुभव की तस्वीर नहीं ली तो शायद वो हुआ ही नहीं। वो जो कहावत है, पिक्स और इट डिडंट हैपन।
हाँ हाँ बिल्कुल।
या जैसे यात्रा करना, कई बार वो सिर्फ घूमने और अनुभव करने के लिए नहीं होता बल्कि तस्वीरें खींचकर सबूत जमा करने जैसा बन जाता है कि हम वहां गए थे।
सोचिए, जैसे आजकल रियलिटी शो की रियलिटी हमें असली जिंदगी से ज्यादा नाटकीय और दिलचस्प लगती है।
हाँ।
या सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली परफेक्ट जिंदगी असल जिंदगी से ज्यादा आकर्षक लगती है।
एग्जैक्टली।
जहाँ छवि असलियत पर हावी हो जाती है। एक और दिलचस्प बात, सोनटैग दृष्टि की वीरता के बारे में कहती हैं।
दृष्टि की वीरता, ये क्या है?
जब ये सवाल उठता है कि क्या फोटोग्राफी कला है, तो वो कहती हैं कि ये सवाल ही शायद सही नहीं है। फोटोग्राफी की असली ताकत या कहें वीरता इस बात में है कि वो किसी भी चीज को, चाहे वो कितनी भी मामूली, कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो, फ्रेम में लाकर उसे देखने लायक, उसे महत्वपूर्ण बना सकती है।
मतलब सुंदरता या महत्व अब सिर्फ खास चीजों में नहीं रहा।
हाँ, बल्कि फोटोग्राफर की नजर में है, उसके चुनाव में है। कैमरा किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बना सकता है,
लेकिन इसका एक नतीजा ये भी है कि महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण, सुंदर और बदसूरत के बीच का जो फर्क था वो धुंधला होने लगता है। सब कुछ एक ही सतह पर आ जाता है।
तो ये तो बहुत सारे गहरे विचार हैं इस किताब में। अगर हम इन सब विचारों को समेटें तो कुछ खास बातें या थीम्स क्या उभरती हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं?
बिल्कुल। पहली बात तो जैसा हमने कहा कि फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीर लेना नहीं है, ये शक्ति का भी खेल है। पावर डायनेमिक्स, तस्वीर के जरिए हम किसी चीज पर, किसी इंसान पर या किसी पल पर एक तरह का नियंत्रण पाते हैं, उसे अपना बनाते हैं।
हाँ, भारत में सोचिए कैसे सेलिब्रिटीज की तस्वीरें खींची जाती हैं, किस तरह उनकी प्राइवेसी पर हमला होता है, या आजकल हर जगह लगे CCTV कैमरे, ये सब कहीं ना कहीं देखने और नियंत्रित करने की इच्छा से ही जुड़े हैं।
सही कहा। दूसरी अहम बात है असलियत का माध्यम बनना और फिर उसकी जगह ले लेना। हम वाकई एक इमेज वर्ल्ड में जी रहे हैं।
हाँ, जैसे भारत में शादियों को ही देख लीजिए, अब शादी का अनुभव उतना ही जरूरी लगता है जितना कि उसकी परफेक्ट तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। कई बार तो लगता है कि पूरा इवेंट ही तस्वीरों के लिए रचा जा रहा है।
बिल्कुल, ये हाइपर रियलिटी का बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा है दुख दर्द को देखने की नैतिक दुविधा।
हाँ, ये बहुत परेशान करने वाला सवाल है। जब हम किसी दुर्घटना या त्रासदी की तस्वीरें या वीडियो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं या न्यूज में देखते हैं, तो क्या हम सच में कुछ महसूस करते हैं या बस देखकर आगे बढ़ जाते हैं?
सोनटैग की वो करुणा की थकान वाली बात यहाँ बहुत मौजू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा दुख देखकर हम धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे हैं, असंवेदनशील?
ये डर तो लगता है। चौथी बात क्या है?
चौथी बात है कि तस्वीरें हमें अतीत से जोड़ती हैं, वो नॉस्टैल्जिया जगाती हैं। पुराने फैमिली एल्बम देखना कैसा लगता है?
हाँ, एक अलग ही एहसास होता है, गुजरा हुआ वक्त, वो लोग जो शायद अब नहीं हैं।
बिल्कुल, हर तस्वीर गुजरे हुए वक्त की कहानी कहती है। ये फोटोग्राफी का एक बहुत ही भावनात्मक, पर्सनल पहलू है।
और पांचवी बात?
और पांचवी जिसकी हमने बात की कि तस्वीरों की सच्चाई हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, उनका मतलब स्थिर नहीं होता, उसे बदला जा सकता है।
हाँ, सोचिए कैसे राजनीतिक पार्टियां एक ही घटना की तस्वीरों को अपने अपने नजरिए से पेश करती हैं, या कैसे विज्ञापनों में तस्वीरों का इस्तेमाल हमें लुभाने के लिए किया जाता है, एक खास तरह की इच्छा जगाने के लिए। तस्वीर कभी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होती।
बिल्कुल। तो एक किताब वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है, और इसमें कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, बार बार याद आते हैं।
हाँ, कुछ ऐसे यादगार विचार साझा करेंगे?
जरूर। जैसे ये विचार कि तस्वीर लेना किसी चीज को हथियाना है, उस पर कब्जा करना है। ये हमें दुनिया के साथ एक ऐसा रिश्ता देता है जो ज्ञान जैसा महसूस होता है, और इसलिए शक्ति जैसा, भले ही वो असली ज्ञान या शक्ति न हो।
और एक वो बात भी थी कि कैमरा हमें अपने और दूसरों की जिंदगी में एक पर्यटक बना देता है।
हाँ।
हम अनुभव करने के बजाय उसे बाहर से देखने और कैप्चर करने लगते हैं, अपनी ही जिंदगी के दर्शक बन जाते हैं।
और ये भी बहुत जरूरी लगा कि तस्वीरें सिर्फ दिखाती नहीं, वो हमें सिखाती हैं कि क्या देखना है, कैसे देखना है और कैसा महसूस करना है। वो देखने का एक व्याकरण और उससे भी बढ़कर देखने की एक नैतिकता बनाती हैं।
सही।
और बार बार वो प्लेटो की गुफा वाली बात याद आती है कि हम मानव जाति शायद अपनी पुरानी आदत के अनुसार असलियत की जटिलताओं से बचकर तस्वीरों की आसान सपाट दुनिया में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। हम सत्य की महज छवियों में ही आनंद लेना सीख गए हैं।
ये सब सुनने में जितना दिलचस्प है उतना ही थोड़ा परेशान करने वाला भी। तो सवाल उठता है कि हम इन विचारों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें। ये तो 70 के दशक की बातें हैं, आज डिजिटल युग में इनका क्या मतलब है?
मतलब तो मेरे ख्याल से आज और भी गहरा हो गया है। सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकते हैं, ज्यादा आलोचनात्मक हो सकते हैं।
कैसे?
इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो परफेक्ट जिंदगियां दिखती हैं उन पर सवाल उठाएं, खुद से पूछें क्या ये सच है या सिर्फ एक बहुत सावधानी से बनाई गई प्रस्तुति, और खुद भी सोचें क्या मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ या उसे दिखाने के लिए जी रही हूँ।
आत्मचिंतन जरूरी है, और क्या कर सकते हैं?
दूसरा, हम अपनी मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब भी कोई तस्वीर देखें, चाहे वो खबरों में हो, विज्ञापन में या कहीं और, रुक कर पूछें ये किसने खींची है, क्यों खींची है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है, इसका कैप्शन मेरे विचारों को कैसे मोड़ रहा है।
मतलब एक एक्टिव दर्शक बनना, पैसिव नहीं।
बिल्कुल। तीसरा, एक कोशिश करें कभी कभी फोन को दूर रखें और पलों को सीधे अनुभव करें।
जैसे
किसी कॉन्सर्ट में जाएं तो संगीत को महसूस करें, ना कि सिर्फ वीडियो बनाएं। दोस्तों के साथ हों तो बातचीत का आनंद लें। यात्रा पर हों तो नज़ारों को अपनी आंखों से देखें, ना कि सिर्फ कैमरे के लेंस से। अनुभव को जीना, सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं।
ये मुश्किल है आजकल, पर कोशिश करने लायक बात है।
और चौथा,
जब हम दुनिया में कहीं हो रहे दुख दर्द की तस्वीरें देखें, युद्ध की, किसी आपदा की, तो सिर्फ देखकर या लाइक शेयर करके आगे न बढ़ जाएं। सॉन्टैग की वो करुणा की थकान वाली चेतावनी याद रखें।
तो क्या करें?
थोड़ा रुकें, उसका संदर्भ समझें और सोचें कि क्या इस जानकारी का कोई सार्थक उपयोग हो सकता है, क्या हम सतही प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं।
ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। तो इस पूरे चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा सबक या टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये समझना रही कि तस्वीरें मासूम नहीं होती।
बिल्कुल नहीं।
वो दुनिया देखने की साफ सुथरी खिड़कियां नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने और यहां तक कि गढ़ने के शक्तिशाली औजार हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि तस्वीरों को पढ़ना कितना जरूरी है, उनकी भाषा, उनके असर, उनके पीछे की राजनीति को समझना। और मेरे ख्याल से जानना जरूरी है कि तस्वीरें लेना और देखना कभी भी तटस्थ न्यूट्रल काम नहीं है, इसमें हमेशा शक्ति संतुलन, नैतिक चुनाव और मनोवैज्ञानिक परिणाम शामिल होते हैं। सॉन्टैग हमें एक तरह से चेतावनी देती हैं कि अगर हम छवि को, चीज पर, नकल को असल पर तरजीह देते रहेंगे तो हम धीरे धीरे असलियत से अपना रिश्ता खोने के खतरे में हैं।
बिल्कुल, मुझे व्यक्तिगत रूप से वो करुणा की थकान वाला विचार बहुत सोचने पर मजबूर करता है। ये सोचना कि आज के इस 24/7 न्यूज और सोशल मीडिया के दौर में, जहां हम लगातार दुख और हिंसा की तस्वीरें देखते हैं, हम कैसे भावनात्मक रूप से सुन्न हो सकते हैं, ये वाकई एक गंभीर बात है।
हाँ, और मेरे लिए इमेज वर्ल्ड और हाइपर रियलिटी के विचार आज भी उतने ही, शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। हम कितनी आसानी से तस्वीरों से बनी इस दुनिया को अपना लेते हैं और कई बार तो उसे असलियत से ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ये वाकई थोड़ा डरावना भी लगता है।
सही कहा।
तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
इस डिजिटल युग में, जहां हम सब हर रोज अनगिनत तस्वीरें बनाते भी हैं और देखते भी हैं, उस इमेजेस की इकोलॉजी यानी तस्वीरों की दुनिया में एक तरह के संतुलन, एक जिम्मेदारी की भावना को बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, जिसकी जरूरत सुज़न सॉन्टैग ने दशकों पहले महसूस की थी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।